विश्व दर्पण। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम सीरिया संकट और इस देश की सरकार तथा विरोधियों की वार्ता की विफलता के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया हमारे साथ रहें। सीरिया की सेना ने हाल ही में देश के कई रणनीतिक क्षेत्रों को आतंकियों से मुक्त करा लिया है, जिनमें नुब्बुल व अज़हरा नामक शहर भी शामिल हैं, जिन्हें 4 साल से आतंकियों ने घेर रखा था। इन दोनों शहरों का परिवेष्टन समाप्त होने से तकफीरी आतंकी और उनके समर्थक इतने बौखला गए कि उन्होंने जिनेवा में चल रही शांति वार्ता को जारी रखने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया कि यदि अमरीका सहमत हो तो वो सीरिया में अपनी जमीनी सेना भेजने के लिए भी तैयार है। पश्चिमी संचार माध्यमों ने यह प्रचार आरंभ कर दिया कि जिनेवा शांति वार्ता सीरिया में रूस के वायु हमलों के कारण विफल हुई है। इसी बीच लंदन में सपोर्टिंग सीरिया शीर्षक के अंतर्गत दाता सम्मेलन हुआ, जिसमें सीरियाई जनता तक सहायता पहुंचाने के मार्गों की समीक्षा की गई। सीरियाई जनता तक सहायता पहुंचाने के संबंध में ये बात विचार योग्य है कि अमरीका व उसके क्षेत्रीय घटक देश विशेषकर सऊदी अरब व तुर्की सीरिया में लड़ रहे उन आतंकियों तक तो सहायता पहुंचाने की बात करते हैं जो सीरियाई सेना के घेरे में आ गए हैं, लेकिन आतंकियों के घेरे में आने वाले सीरियाई नागरिकों बल्कि शरणार्थी कैंपों में रहे अत्याचार ग्रस्त सीरियाई लोगों तक सहायता पहुंचाने पर वे कभी तैयार नहीं होते। नुब्बुल व अज़हरा इसका उदाहरण है, जो 4 साल तक आतंकियों के घेरे में रहे, लेकिन इन शहरों के लोगों तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंची। हमने पाकिस्तान के प्रख्यात टीकाकार प्रोफेसर किंदील अब्बास से पूछा कि नुब्बुल व अज़हरा शहरों का परिवेष्टन समाप्त होने का महत्व क्या है, तो उन्होंने कहा,
देखिए, हलब का जो इलाका है ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये तुर्की से जो आने वाले रास्ते थे उस रास्ते पे वाक़ है, और नुब्बुल और अज़हरा जो थे पिछले तकरीबन 4.5 साल से मुहासरे में थे और यहाँ के हालात बहुत ही गंभीर थे। अब जब हुकूमती कार्रवाइयों से और वहाँ पर जो मुज़ाहमती तहरीक है उनकी मदद से उन्होंने जब इसका मुहासरा तोड़ा है, तो मेरा ख्याल ये है कि एक की पॉइंट जो था इसी रास्ते से, चूंकि सारी मदद जो तकफीरी ग्रुप थे या वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप थे, इंतहा पसंद ग्रुप, सारी मदद इसी रास्ते से आ रही थी। अब चूंकि जो नेटवर्क बना हुआ था पूरे शाम के अंदर, उस शाम के अंदर उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए नुब्बुल और अज़हरा की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मेरा ख्याल ये है कि इन दो इलाकों के आज़ाद होने के बाद पूरे शाम में जो दहशतगर्द ग्रुप है उनकी कमर टूट गई है, और ख़ास तौर पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उनको मदद पहुंच रही थी उस मदद का अब रास्ता रोक दिया जाएगा।
नुब्बुल व अज़हरा नगरों की स्वतंत्रता के तुरंत बाद सऊदी अरब ने यह कहा कि यदि अमरीका सहमत हो तो वो सीरिया में जमीनी सेना उतार देगा। ईरान में रह रहे प्रख्यात टीकाकार जाफर रजी खान से हमने पूछा कि अगर अमरीका किसी स्वाधीन देश में सेना उतारने की अनुमति दे दे तो क्या उसे वैधता प्राप्त हो जाएगी, तो उन्होंने कहा,
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो कि यूएस की पॉलिसीज है कि पिछले कितने अशरों से चल रही है, वो ये है कि इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करना, और जो अलाइज हैं, जो उनके मुत्तहिद हैं, वो जो करेंगे जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके खिलाफ कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये अब इसकी ये जो पॉलिसी थी, अब इसको जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन में इसको चैलेंज किया जा रहा है। खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या जो एंटी वॉर ग्रुप्स हैं, वो इस पॉलिसीज़ को जो है उसकी स्ट्रांगली मजम्मत करते हैं कि जब इसराइल चाहे किसी मुल्क पे हमला कर दे, जब यूएस का कोई मुत्तहिद या एलाइज सऊदी अरब चाहे यमन पे हमला कर दे, जब इसराइल चाहे जो है वो फ़िलिस्तीन पे हमला कर दे, तो या पिछले जो दाहों में इराक वार है, अफ़गानिस्तान वार है, लीबिया वार है, ये बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो इनको जो है इलीगल वार समझते हैं, जिस जो कि इन क्राइसिस का इन मुल्कों में किसी और तरीके से जो है पॉलिटिकल सलूशन जो है वो मौजूद था। तो अब इस सिचुएशन में जो है ये जो कुछ हो रहा है, ये सऊदी आफर के हम ग्राउंड ट्रूप्स लाने के लिए तैयार हैं, तो यमन में ऑलरेडी जो है उन्होंने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है, यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तबाह किया है। यमन में जो है हज़ारों के हिसाब से मारे जाने वाले अफराद में से 80% से अबव, 90% से अबव जो है वो अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट्स जो है वो सिविलियंस हैं, उसमें इंक्लूडिंग वीमन और बच्चे भी हैं। तो अब जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम सऊदी रजीम को जो है इस वक्त वो लेजिटिमेसी का है।
रूस ने सऊदी अरब की इस घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सीरिया में सेना भेजने का अर्थ युद्ध की घोषणा होगा। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी और सऊदी अरब ने सीरिया में अपनी सेना भेज दी तो स्थिति क्या होगी? इस प्रश्न के उत्तर में किंदी लब्बास कहते हैं,
इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो इंटरनेशनल पॉलिसीज चल रही हैं उसमें अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब की पॉलिसी में यकसानियत नहीं पाई जाती। मेरा ख्याल ये है कि अगर अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स कोई डिसीजन लेंगे तो उन पर अपनी अवामी राय, जो राय है, उसका बहुत ज़्यादा एक दबाव भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि रूस की तरफ से जिस अंदाज में कार्रवाइयाँ हुई, वो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई जिसमें अनुसरा फ्रंट सर फहरिस्त रहा है, इस हवाले से आप देखें तो पूरी दुनिया में कहीं से भी रूस के खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि कहीं पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई हो। इन चीजों को अगर सामने रखें तो तीसरा जो एक अहम पहलू है वो ये कि अब शाम की अपनी फौज जो है अब डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से निकलकर ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू में आ गई है। मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब की फौजें अगर यहां पर आती हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, पहली बात है सर्वाइव करना, और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली अब यह बात मान ली गई है कि शाम की हुकूमत के हाथ मजबूत किए जाएं अगर शाम के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहते हैं। और अगर जहां तक बहरानों का ताल्लुक है तो उसको भी हल करने के लिए सियासी हल सामने आना चाहिए।
सीरिया में शांति स्थापना के संबंध में ईरान व रूस के सहयोग की सफल भूमिका के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए भारत के प्रख्यात टीकाकार सौरभ कुमार शाही कहते हैं,
मुझे लगता है कि ये तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर आप सीरिया में इवेंट्स को देखें, कम से कम अक्टूबर के बाद के इवेंट्स को देखें अभी तक में, तो ये कोऑपरेशन तो ऑलरेडी कायम में के रास्ते में काफ़ी आगे निकल चुकी है। अगर आप अभी हलब की स्थिति देख लें, अगर आप लतकिया में देख लें, अगर आप इदलिब का माहौल देख लें, जिस तरीके से वहाँ पे अचीव किया गया, जिस तरीके से वहाँ अलकायदा से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं यानी हरार साम हैं और जबहतुल नुसरा है, इस तरह के ग्रुप हैं, इस तरह से जिनको टारगेट किया गया है, जिस तरह से उन वो जो है वो हार रहे हैं, ये एक इंडिकेटिव है कि ये पॉजिटिव कोऑपरेशन जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल है। यानी अब इसको सिर्फ मजबूत करने की बारी आ रही है, अब इसमें यानी ग्राउंड वर्क, इसमें फ्रेमवर्क बनाने की बात नहीं रहेगी, फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन चुका है। जिस तरह के कोऑपरेशंस, जिस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग वहाँ पे ही नहीं, इनफैक्ट इराक में भी उस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो अब शुरू हो गई है दोनों मुल्कों के बीच में। तो एक ग्राउंड वर्क, एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी तैयार है, उसने अपने जो है रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए हैं। ये रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनको देख के लोगों के लोग भौचक्के रह गए हैं। मैं आपको बताऊं, यही रॉयटर्स और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में इनकी हेडलाइंस होती थी कि ये रसिया के लिए वही हाल हो जाएगा जो अफगानिस्तान में उसका हाल हुआ था और वहाँ पे ये इनको हार मिलेगी, और ईरान के लिए ये सीरिया जो अफगानिस्तान बन जाएगा। तमाम इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, वो सारे बदल गए। अगर लास्ट 3-4 दिन के आप हेडलाइंस देखें, खासकर 2 तारीख के बाद जब वहाँ पे वो दो जो शिया बहुल इलाके हैं जिनका कि एक सीज जो है वो तोड़ा है हिजबुल्ला ने, उसके बाद देखें तो इनकी हो इनके जो है होश उड़ गए हैं। ये तमाम अब उसमें बातें आने लगी हैं कि जी अब हलब तो हाथ से निकल गया, इसके तुर्की के इन्फ्लुएंस से निकल गया, और जी अब असद जो है उनको कोई हिला नहीं सकता। तो एक अचीवमेंट ऑलरेडी ली गई है, उस अचीवमेंट को जो है वो गेन किया है इन दोनों कंट्रीज़ ने, आपस में मिल के अचीव किया है। मुझे ये लगता है कि एक इंडिकेटिव है, ये इशारा है वेस्ट को कि अगर दोनों कंट्री चाहें तो वो उनके इरादों को नाकाम कर सकते हैं।
अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब द्वारा जिनेवा में सीरिया की शांति वार्ता की विफलता के लिए रूस के वायु हमलों को दोषी बताए जाने के बारे में किंदी लब्बास कहते हैं,
देखिए इसका जवाब मेरा ख्याल है रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने बड़ा अच्छे अंदाज में दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब जिनेवा में अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो ग्रुप अपने आप को अपोजिशन का नाम देते हैं उनका यहाँ से वॉकआउट करना समझ से बालातर है, क्योंकि उनको तो इस पर मुबारकबाद पेश करनी चाहिए थी शाम की हुकूमत को, और खुशी का इजहार करना चाहिए था कि शाम में जो दहशतगर्द ग्रुप थे, इंतहा पसंद ग्रुप थे, उनके खिलाफ शाम की हुकूमत की कार्रवाइयाँ कामयाब हुई हैं, और उन इलाकों में जहाँ पर 4-4.5 साल से उन्होंने आवाम को घेरे में लिया हुआ था, अब आवाम तक इंसानी इमदाद जो है पहुँचनी शुरू हुई है, इस बात पर तो इन ग्रुपों को खुश होना चाहिए था। लेकिन इनका वॉकआउट करना ये बता रहा है ہے کہ ان کا تعلق بھی انہی دہشت گرد گروپوں سے ہے, اور روس کا اب جو تازہ موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب اقوام متحدہ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ شام کی حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن ہے کون. اگر تو دہشت گرد گروپوں کو اپوزیشن کے طور پر سامنے لانا ہے تو پھر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ پھر عالمی برادری یا خود روس یا باقی دنیا کے ممالک شام میں کن دہشت گرد گروپوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو جنیوا مذاکرات میں شامل گروپ ہیں ان گروپوں کے اندر بھی انتہا پسند گروپ شامل ہیں, اور سب سے پہلے میرا خیال ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا کہ اب شام کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کس کو کرنے چاہیے. اور روس کے لیے میرا خیال ہے ایک فری ہینڈ ان کو مل گیا ہے کہ اگر یہ گروپ ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی نشانہ بنایا جانا ضروری ہے.
لندن میں آیوجت ہونے والے سپورٹنگ سیریا شیرشک کے انترگت داتا سمیلن کے بارے میں قندیل عباس کا کہنا ہے.
2011 سے لے کر اب تک 2 سے 2.5 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے ہیں شام کے اندر جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں ان میں, اور 11 ملین سے زائد جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں, اور اسی طرح لاکھوں افراد جو ہیں وہ اس وقت بھی شام کے اندر بنیادی جو ضروریات ہیں اس سے محروم ہیں. ان 2011 سے لے کر اب تک جو عالمی سطح پر جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی کہ جس میں ایک طرف تو جو عام عوام ہیں شام کے ان کی حمایت کے لیے ان کو تک بنیادی ضروریات پہنچانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہو. اس کی بجائے ہمیں یہ نظر ضرور آیا کہ عالمی برادری, سو کارڈ عالمی برادری جو ہے انہوں نے جو وہاں پر حملے کرنے والے گروپ ہیں اور فوجی کاروائیاں کرنے والے گروپ ہیں یعنی دہشت گردانہ کاروائیوں میں شامل گروپ ہیں ان کو نہ صرف ٹریننگ دی بلکہ ان کو ہتھیار بھی دیے, ان کو پیسہ بھی دیا. جہاں تک ڈونر کانفرنس کا تعلق ہے تو میرا خیال کہ اب یورپی ممالک کا یہ اپنا حق بنتا ہے کہ وہ ان ممالک میں آنے والے مہاجرین کو یا تارکین وطن کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر ڈونر کانفرنس کچھ کرنا چاہتی ہے تو اسے شام کے اندر جو مسائل پیش آ رہے ہیں اور شام کے عوام تک بنیادی ضروریات جو پہنچائی جانی ہے ان کے بارے میں کوئی ڈونیشن دینی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ شام کی تعمیر نو کے اوپر غور و خوص ہونا چاہیے.
پرتیک دشا میں سیریا سنکٹ کے بارے میں وشو استر پر بھی پرستھتیاں تیزی سے بدل رہی ہیں, اور خود سیریا کے اندر کی زمینی پرستھتیاں بھی اس درشٹی سے بدل رہی ہیں کہ اس دیش میں آتنکیوں کو نرنتر پراجے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے نینترن سے مہتوپورن کھیتر ایک کے بعد ایک نکلتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ آتنکیوں کے سمرتھک دیش بھی سامرک اور راجنیتک استر پر وفل ہوتے جا رہے ہیں, اور اسی لیے وہ بوکھلا کر سیریا میں زمینی سینا بھیجنے جیسے ہاسیاسپد بیان دے رہے ہیں. واستوکتا یہ ہے کہ سیریا سنکٹ کا سمادھان, جیسا کہ ایران بارمبار بل دے کر کہتا آیا ہے, ودیشی ہستکشیپ کے بنا کیول سیریائی پکشوں کے بیچ وارتا سے ہی سمبھو ہے.